सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनं सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुवममपथसोखमणवज्रं केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर करी थी और जिसके रचयिता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार ये रचना की थी षटखंडागम की। और जो धरसेन आचार्य ने जो उपदेश दिया है वो जो मूल बात चली आ रही है महावीर भगवान से, उनकी दिव्य ध्वनि में से जो बात निकली थी, गणधरों ने जिसकी रचना की थी, वो मूल आगम की ही बात जो परंपरा से चली आई थी उसकी यहाँ बात हो रही है। अब यहाँ पृष्ठ संख्या 469 पर हम आए हैं। यहाँ हम अभी मार्गणाओं में आलाप देख रहे हैं। तो गति मार्गणा में पहले हम चल रहे हैं अपनी बात, तो उसमें गति मार्गणा में नरक गति जो है वो नरक गति में यहाँ हम आलाप देख रहे हैं। तो नरक गति में हमने सामान्य भी देखे, पर्याप्त अपर्याप्त भी देखे, उसमें गुणस्थानों की भी चर्चा की। अब यहाँ पर पहले नरक की बात हमने देख ली थी, पहले नरक में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं, फिर पर्याप्त में कौन से हो सकते हैं, अपर्याप्त में कौन से हो सकते हैं, ये बातें हमने देखी। अब जो द्वितीय नरक का नारकी है उसमें सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त देखे हमने कल। अब ये जो उसमें द्वितीय नरक में पॉसिबल जो चार गुणस्थान है उसमें भी बात चलेगी। तो द्वितीय नरक और मिथ्या दृष्टि, ये जो अभी यहाँ हम आलाप पढ़ेंगे कि द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। मिथ्या दृष्टि है ना, तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो गए उसमें। सासाधन में क्यों कौन कौन हो गए? हाँ, अकेले पर्याप्त। और सम्यक मिथ्यात्व में पर्याप्त। और चौथे गुणस्थान में कौन से नरक की बात चल रही है? दूसरे नरक में है तो सम्यक दृष्टि भी पर्याप्त ही होगी, अपर्याप्त अवस्था में कोई नहीं होगी, ख्याल है ना। तो संगी, ये पहला गुणस्थान चल रहा है, तो संगी पर्याप्त और अपर्याप्त। पहले नरक में जा सकता है सम्यक के साथ, पहले नरक में जा सकता है। यहाँ दूसरे नरक की बात चल रही है तो वहां जाने के पश्चात तो वो सम्यक दृष्टि होता है, तो वो पर्याप्त अवस्था में होता है, ख्याल है। हाँ, अब छह पर्याप्तियां, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण सात प्राण, क्योंकि हमने कौन कौन लिया है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए, तो दस प्राण और सात प्राण दोनों हो जाएगी उसमें। चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काएं। अब जो मिथ्या दृष्टि है उसमें योग कौन कौन से हो गए, दूसरे नरक की बात चल रही है, तो दूसरे नरक में योग कौन कौन से हो गए, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है। हाँ, मन के चार, वचन के चार, वैक्रेक, वैक्रेक मिश्र और कार्मा, क्योंकि 11 हो जाएगी। हाँ, तो चारों मन योग, चारों वचन योग, 469 पेज, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग और कार्मण का योग, ये 11 योग वेद में नपुसक वेद हम पढ़ रहे हैं अभी इसमें से, फिर बाद में चार देखेंगे। चारों कषाय, तीनों अज्ञान, मिथ्या तो गुणस्थान चल रहा है तो तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, विभंग के साथ दर्शन नहीं लेना, इसलिए दो ही दर्शन लिए। अभी द्रव्य से लेशा कौन सी है नरक में? कृष्ण लेशा सभी नरकों में, और भाव की लेशा हर नरक की अलग अलग है। पिनांग आप कल थे कि नहीं थे? देखो भाव की लेशा हम पेज नंबर हमने देखी थी, कौन से नरक में कौन सी भाव लेशा होती है हमने इसको पढ़ा था। पृष्ठ संख्या है 459। जरा देख लेते हैं उसमें हमने क्या बातें देखी। अभी यहाँ नरक गति की मार्गणा चल रही है, और उसमें हमने सभी नरकों की बात भी की, पहले नरक की भी की, अब दूसरे नरक की बात चल रही है। तो दूसरे नरक में ध्यान लेने योग्य बात है कि सम्यक दृष्टि मरकर नहीं जाएगा वहाँ, अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि नहीं होगा। तो दूसरे नरक के पर्याप्त अवस्था में तो चारों गुणस्थान हो गए, परंतु अपर्याप्त अवस्था में कितने कितने गुणस्थान हो गए? पहला और बस उतना ही, क्योंकि दूसरे वाला नरक में नहीं जाता, तीसरे वाला मरता नहीं है, चौथे वाला मरकर पहले से आगे जाता नहीं है, ख्याल है ना? तो ये बात अपने ख्याल में ले। अब यहाँ अपने लेशा की बात चल रही है, तो सभी नरकों में द्रव्य लेशा तो अतिकृष्ण लेशा है, जिसको काला काला भास कहा है, कृष्ण लेशा कहे तो भी चले। तो द्रव्य से सभी यानी शरीर का वर्ण सभी का अत्यंत काला है। भाव से कैसे कैसे? तो ऊपर ऊपर कपोत है और नीचे नीचे फिर नील और कृष्ण। तो हर एक लेशा के हमने तीन तीन भेद किए। ऊपर से शुरू करते तो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जहां उत्कृष्ट आया वहीं पर नील का जघन्य शुरू हो जाता है, यानी उस नरक में दोनों हो गए। यानी पहले नरक में कौन सा होगा? जघन्य कपोत, दूसरे में मध्यम कपोत, तीसरे में उत्कृष्ट कपोत और जघन्य नील, अब चौथे में मध्यम नील, पांचवे में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, छठे में कृष्ण मध्यम वाला, और सातवें में उत्कृष्ट कृष्ण। अभी इसमें पढ़ेंगे हम, देखो ये विशेषार्थ है ना, उसको पढ़ना। प्रथम पृथ्वी में जघन्य कापोत्लेशा होती है, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत्लेशा होती है, तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट कापोत्लेशा और जघन्य नील लेशा होती है, यहाँ दोनों को लिया। चौथी पृथ्वी में मध्यम नील लेशा होती है, पांचवी पृथ्वी में उत्कृष्ट नील लेशा और जघन्य कृष्ण लेशा, फिर दोनों आ गए। छठी पृथ्वी में मध्यम कृष्ण लेशा होती है, और सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेशा होती है, यानी उत्कृष्ट कृष्ण लेशा होती है। ये लेशा के बारे में ध्यान लेने योग्य बात तो ये है, किसी भी नरक में योग कितने पूछेंगे, क्योंकि योग और लेशा में गड़बड़ होती है। तो पर्याप्त जीवों के चार वन के चार वचन के और वैक्रिय का योग हुआ तो 9 योग हो गए पर्याप्तों के, और अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिक मिश्र और कार्मण का योग, ये 2 हो गए। द्रव्य की लेशा पर्याप्त अवस्था में कृष्ण होगी, और अपर्याप्त अवस्था में कौन सी होगी? शुक्ल और कापोत। कार्मण जब तक विग्रह गति में है कार्मण का योग में तो शुक्ल लेशा होती है, और जब वैक्रिक मिश्र हो जाता है तो वहां कापोत लेशा होती है। कहीं भी अपर्याप्त अवस्था हो, देव की है, नरक की है, तिर्यंश की है, मनुष्य की है, तो अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य लेशा तो शुक्ल और कपोत होगी। ये कहाँ कहाँ हमारी गलती होती है, ये इतनी बातें ख्याल में लेंगे ना, आगे जैसे जैसे हम आगे आगे टेबल करेंगे तो बार बार वो टेबल आते जाएंगे, तो हमारा पक्का होने वाला ही है। शुरू में ऐसा लगता है अपने को कुछ नहीं समझ में आया, वो उदाहरण दिया था ना, नया कटोरा होता है मिट्टी का, तो उस पर पानी डालते ऐसे नहीं लगता कि गीला हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी डालने पर वो गीला दिखता है, पर अंदर भी वो पहले पानी ने भी काम किया है वहां गीलापन का। तो यहाँ अपने बातें धीरे धीरे अपने ऐसा लगता है अभी खूब बहुत कंफ्यूजन है, और ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप मेरे भी पहले फटाफट बोलने लगोगे, है ना? तभी हम आगे हैं यहाँ, ये आलाप देख रहे थे हम दूसरी पृथ्वी का, मिथ्या दृष्टि नारक का आलाप देख रहे थे। 469 पेज पर वापस आ जाना, वहाँ हम लेशा देख रहे थे। द्रव्य से तो हमने देखी, यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य कहा है, पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है, इसलिए द्रव्य में काला काला भास कृष्ण लेशा तथा कापोत और शुक्ल लेशा बताई। अब भाव से कौन सी होगी दूसरी पृथ्वी में? अभी अभी हमने देखा था ना, प्रेरणाबेन मध्यम कपोत। पिनांग क्या लाता है? देखिए द्रव्य लेशा यानी शरीर का वर्ण, और भावलेश यानी जीव के जो परिणाम है, कषाय से अनुरंजित योग, इनका जो मिला जुला ऐसा जो कोई परिणाम है उसको कहते हैं भावलेश। तो ये भावलेश छह होती है, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये कृष्ण, नील और कपोत ये अशुभ लेशाएं हैं। नरकों में तो तीन अशुभ लेशाएं होती है। जब हम नरक इन जनरल कहेंगे तो कहेंगे वहां तीन अशुभ लेशाएं होती है, बराबर। परंतु अभी ऊपर के नरकों में जैसे है ना, नीचे नीचे के नरक की नार की जीव अति तीव्र परिणाम हो गए वहां। वहां जो कोई क्रोध, मान, माया, लोभ जो कुछ चलता होगा, मारकाट चलती होगी, आपस में जो कोई दुश्मनी चलती होगी, तो अति तीव्र हो गए नीचे। ऊपर थोड़ा कम है तो ऊपर कपोत लेशा है, बीच में नील लेशा है और नीचे कृष्ण लेशा है। तो यहाँ हमें लेशा बतानी है। तो अपने दूसरे नरक की बात चल रही, तो कौन सी होगी दूसरे नरक में लेशा, भावलेशा? पहले हमने शुरू की जघन्य कपोत, दूसरे में मध्यम कपोत। तो यहाँ क्या लिखा देखे, भाव से मध्यम कपोत लेशा, ख्याल है। अभी तीसरे नरक में क्या कहेंगे, उत्कृष्ट कपोत और जघन्य नील, है ना? ये तो ऐसा आसान है। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, ये भव्य और अभव्य दोनों ही है। कौन से गुणस्थान की बात चल रही है अपनी, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व है, नारकी है, तो हमें लगता है नहीं नहीं अभव्य जाते होंगे नरक में, ऐसा नहीं है। भव्य भी पड़े है वहां कितने है। ये मिथ्यात्व, आगे ये जो मिथ्यात्व नाम आया है वो कौन से मार्गणा का है, आप जरा ढूंढ के बताना पिनांग भाई। ये कौन सी प्ररूपना चल रही है मिथ्यात्व, ये बीच में क्या आ गया फिर? यहाँ गुणस्थान की तो चर्चा नहीं है, आप नीचे देख सकते हैं मी कहाँ लिखा है, राइट साइड। हाँ बराबर है, सम्यक तो मार्गणा का ये भेद है। सम्यक तो मार्गणा में हमने मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व और तीन टाइप के सम्यक्त्व, ये छह भेद देखे थे। तो यहाँ पर मिथ्यात्व नाम का भेद होगा। सौनिक, नरक में तो सभी संगी ही होते हैं, देवों में भी और मनुष्य में भी, है ना? आहारक, अनाहारक, क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए हैं। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, बराबर। ये तो सामान्य आलाप हुआ, अब पर्याप्तों का आलाप हम देखेंगे और फिर अपर्याप्तों का देखेंगे। अपर्याप्त, हरेक अपर्याप्त में अनाहारक होना ही चाहिए ऐसी बात नहीं। जो इशु गति से जाता है, रुजु गति से, बिना मोड़ के जो जाता है ना अन्य भव में, तो उसके आहारक चलता रहता है। मरण के समय तो समझो कोई मनुष्य मरा और देव हुआ, तो मरण के समय में तो औदारिक शरीर के परमाणु का ग्रहण किया, आहारक था। अगले ही समय में वैक्रियक शरीर के परमाणु का ग्रहण किया, वो भी आहारक ही रहा, क्योंकि एक ही समय में वहां पहुंचा और उसका डायरेक्ट मिश्र का योग चालू हो गया, बीच में उसको कारमाण का योग नहीं रहा। तो हरेक अपर्याप्तों को अनाहारक होना ही है ऐसी बात नहीं है।
एक मोड़ है, दो मोड़, तीन मोड़ है।
हाँ, एक मोड़, दो मोड़ और तीन मोड़ वाले, एक किसको किसको समझ में क्या
आने को, लिखने करते
है। लिखने के लिए ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि कौन सा जीव कितने मोड़ कर लेकर जागा ये तो अपने बात पता नहीं है। दूसरा नरक भी कहे पर एग्जैक्ट हम जहाँ खड़े उसी के नीचे वो नारकी होना चाहिए। स्वर्ग में भी कोई जाए तो एग्जैक्ट ऊपर वो नहीं होगा, वो स्वर्ग का विमान थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है ना, तो वहाँ एक मोड़ या दो मोड़ भी लेने पड़े उसमें। और यहाँ तो बस अपने जनरल स्टेटमेंट कह देना, अनाहारक और आहारक होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में दोनों लिखना, अनाहारक और आहारक, क्योंकि यहाँ तो अनेक जीवों की अपेक्षा से बात चल रही है, तो कोई मोड़ वाले भी हो गए, कोई बिना मोड़ वाले भी हो गए, इसलिए दोनों ही ऑप्शंस लिख देना वहां। अब ये द्वितीय पृथ्वी का पर्याप्त आलाप देखेंगे हम। उन्हीं द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि पर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास। देखो जीव समास में क्या कहना है, वो संगी है के असंगी है और पर्याप्त है के अपर्याप्त है, तो संगी पर्याप्त हो गया। फिर पर्याप्ति बताते समय छह पर्याप्ति है, और जो पर्याप्त जीव है उनके प्राण कितने होते हैं, दस प्राण। चारों संज्ञाएं, ये चार संज्ञाएं याद है हमने, चारों चारों करके, हाँ चार संज्ञाएं, हाँ आहार, भय भय मैथुन और परिग्रह, वो जाने का जैसा क्रम है उस ऑर्डर में हम याद करते हैं। पहले आहार संज्ञा है, छठे तक है, सातवें से नहीं है। भय आठवें तक है, नौवें से नहीं है। मैथुन यानी जो वेद का जो है वो पहले भाग तक है, नौवें के बाद में नहीं है। और परिग्रह संज्ञा दसवें के अंत तक है, बाद में नहीं है, है ना। तो यहाँ तो नरक है, देव है, तो उसमें तो चारों चारों लिखेंगे हम तिर्यंच में, और मनुष्य में फिर कौन सा गुणस्थान है सोचकर फिर संज्ञा कितनी है वो बताना पड़ेगा। तो ये चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय। ये गति जाति और काय वो तो आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है तो योग में। अब यहाँ पर्याप्त जीवों की बात चल रही है, तो मंदाबेन कितने योग हो गए? नौ योग, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और एक वैक्रिक का योग। नपुसक वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, दूसरा गुणस्थान है तो तीनों अज्ञान हो गए और पर्याप्त जीव है। असंयम, दूसरी पृथ्वी, मैंने दूसरा गुणस्थान कहा, हाँ दूसरी पृथ्वी, बोलना एक चाहते हैं और कुछ निकलता है क्या? तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, यानी विभंग ज्ञान के सह दर्शन नहीं लगाना, चक्षु अचक्षु इतना ही कहना। द्रव्य से काला काला भास कृष्ण लेशा, और भाव से अभी कौन सी लेशा होगी, अभी हमने देखी ना दूसरे नरक में मध्यम कपोत। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, ये सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा मिथ्यात्व है। संगिक, आहारक पर्याप्त है ना, अकेला आहारक ही होगा, अनाहारक नहीं रहेगा, और दोनों ही उपयोग सहित होगा। अभी पृष्ठ पलटने के पहले हम अपर्याप्त की बात करेंगे, कल हमने देखा था ना इसको, अपर्याप्त को भी देख लिया था कि नहीं देखा था। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे फिर आगे अगला वाला लगाएंगे। हाँ, सासादन की बात देखेंगे बागे। अभी इसी में यानी दूसरी पृथ्वी का ही नारकी की बात चल रही है। दूसरे पृथ्वी में हम हर एक गुणस्थान पर लगाएंगे ये सब, तो उसमें सबसे पहले मिथ्या तो गुणस्थान की बात चल रही है। अब उसमें अपर्याप्त जीव चले तो द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि, अपर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, गुणस्थान तो उन्होंने बता ही दिया है क्राइटेरिया में, एक संगी अपर्याप्त लगाना भी। तो अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति कितनी होगी? छह अपर्याप्तियां होगी। फिर प्राण कितने हैं? सेवन, बराबर। ख्याल आता है क्यों प्राण साथ लिए? अपर्याप्त जीव है, मनोबल नहीं है, वचन बल नहीं है, और क्या नहीं है, श्वासोश्वास नहीं है। सात प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय। अब योग में अपर्याप्त जीवों में हाँ कौन से दो? वैक्रेक मिश्र और कारमाण, ये दो योग। नपुसक वेद, चारों कषाय, दो अज्ञान, किसको नहीं लिया अभी पर्याप्तों में जो था और यहाँ नहीं लिया, विभंग, विभंग ज्ञान यानी जो कुअवधि है वो अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न नहीं होता किसी भी जीव को, भले वो देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, विभंग ज्ञान तो पर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ दो ही अज्ञान कहें। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा है, अपर्याप्त है ना, और भाव से कौन सी लेशा होगी? मध्यम कापोत, वही पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, प्रत्येक नरक की पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में भाव से लेशा वही होगी। भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों, मिथ्यात्व, सौंदिक, अब आहारक अनाहारक दोनों हैं, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब जो द्वितीय पृथ्वीगत सासादन सम्यक दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर, अभी ये हम पहले आलाप लगाएंगे, तो सामान्य पहले कहेंगे ना, बाद में पर्याप्त अपर्याप्त कहेंगे। तो ये गुणस्थान कौन सा होगा? बिना भाई आप अभी लगाना, अच्छा कौन लगाएंगे? प्रेरणा बिना आप लगाना। हाँ एक एक बताना। गुणस्थान दूसरा, जीव समास। हाँ ये जीव समास क्यों संगी पर्याप्त बताया? अकेला पर्याप्त ही क्यों बताया? हाँ संगी अपर्याप्त क्यों नहीं लिया? सासाधन वाला मरकर नरक में नहीं जाता, इसलिए सासाधन गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था नहीं होगी सासाधन वाले की, मात्र पर्याप्त अवस्था ही होगी। तो जीव समास में एक पर्याप्त ही होगा, बराबर। अगला क्राइटेरिया कौन सी है? हाँ संगी पर्याप्त, तो वो हो गया। पर्याप्ति में छह पर्याप्ति ले, संगी पर्याप्त नहीं, छह पर्याप्ति। हाँ दस प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, हाँ एक पंच इंद्रिय लिखना उसमें, काय, हाँ योग कितने हो गए? पर्याप्तों में नौ योग, वेद, कषाय, ज्ञान, तीन अज्ञान। हाँ सासाधन वाले को भी अज्ञान कहना है, मिथ्यात्व में भी मिथ्या ज्ञान है, वैसे सासाधन वाले को भी मिथ्या ज्ञान है, कूद ज्ञान है। ऐसा नहीं कहना वो तो सासाधन है, अभी अभी सम्यक तो से गिर कर आया है ना, उसका कुज्ञान हो गया, उसका विपरीत अभिप्राय है वहाँ पर। मिथ्यात्व गुणस्थान में विपरीतता काहे से है? तो वहाँ मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी दोनों है, तो विपरीतता उससे है। दूसरे गुणस्थान में विपरीतता क्यों है? अनंत अनुबंधी का उदय है, इसलिए वहाँ पर भी विपरीत ज्ञान है, मिथ्या यानी वो मिथ्या ज्ञान, ज्ञान में दोष है उसके। ये तीन अज्ञान के हमने, संयम, दर्शन, हाँ और लेशा, द्रव्य से, सभी नरकों में पर्याप्त जीवों में कौन सी लेशा होती है? कृष्ण लेशा, काला काला भास। देखो भाव में फर्क पड़ेगा, द्रव्य से सभी नरकों में कृष्ण लेशा होती है, शरीर का वर्ण काला होता है एकदम, जिसको हम काला कभिन्न कहते ना ऐसा। हाँ द्रव्य से भाव से दूसरा नरक है मध्यम कपोत, बराबर। भव्य के अभव्य, हाँ पिनांग आप बोलो, सासाधन वाला भव्य के अभव्य है? भव्य छे। अभी अभी आया है ना ऊपर से, तो पासपोर्ट उसने कटवा लिया अभी। हाँ सासाधन समय को संगी, आहार क्या अनाहारक, आहारक और उपयोग दोनों, ये सभी आलाप ख्याल में आ गए।
देखो अभी आपको नरक की द्रव्य लेशा की अपेक्षा से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, तो आपको बिल्कुल ख्याल में रहेगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं जब से याद कर रहा हूँ, हम कहीं पंचकल्याणक में गए थे, तो वहाँ पंचकल्याणक में अलग अलग गतियों के वहाँ पर उन्होंने जो दुख है वो बताने के लिए ऐसा जैसा नाटक में दिखाते हैं ना, ऐसा एक जगह सारे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक काला कलर लगा के, जैसा डामर लगाया होगा ऐसे लड़कों को रखा, किसी को एक कढ़ाई में डाला है, किसी को ऐसा सारा नाटक किया था, मतलब एक ही जगह वो बस जरा यहाँ से वहाँ घूमे फिर ऐसा ऐसा करे कि कुलाड़ी से मारे वगैरह वगैरह। तो वहाँ इतना ध्यान रखना कि पूरे जो गोरे गोरे लड़के थे उनको भी काला कलर से काला किया था। तो अभी द्रव्य की अपेक्षा काला काला भास कहो या कृष्ण लेशा कहो, याद रहेंगी आपको, याद है तुझे? ऐसे कढ़ाई में एक आदमी को सुलाया था, ऊपर से उसको ऐसा मार रहे थे वगैरह, नीचे अग्नि जैसा लाइट लगा के रखा था, बहुत अच्छा लगता था।
अभी जैसे दूसरे गुणस्थान का आलाप, तीसरे का भी हम देखते हैं। पिनांग आप ट्राई करोगे? देखो दूसरी पृथ्वी नारकी जीव है और तीसरा गुणस्थान है, दूसरा नरक, दूसरे नरक का नारकी और गुणस्थान है तीसरा, सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान है। तो उसमें गुणस्थान तो बता दिया, कौन सा है अपना तीसरा गुणस्थान? जीव समास में किस किस को लेना है? ये जीव कौन से हो गए, संगी हो गए क्या असंगी हो गए? संगी हो गए। पर्याप्त हो गए कि अपर्याप्त हो गए? पर्याप्त, तो संगी पर्याप्त ये जीव समास हुआ। तो पर्याप्त जीव समास है तो पर्याप्ति कितनी होगी? छह पर्याप्ति। प्राण कितने हो गए? दस प्राण। आसान है ना। उसके आगे का कॉलम क्या क्या है? संज्ञा कितनी है? चारों। गति नरक गति, इंद्रिया एक पंचेंद्रिय, काय त्रस काय। अब ये पर्याप्त जीव है तो योग कितने हो गए? नौ। वेद नपुसक वेद है, कषाय। हाँ, अब जो ज्ञान है वो पर्याप्त जीव है ना, और सम्यक मिथ्यात्व है। कितने ज्ञान हो गए? दो हो गए कि तीन हो गए? देखो नारकी जीवों को वो अवधि ज्ञान तो होता ही है, बोले किसी भी गुणस्थान में हो, यानी तीन ज्ञान हो गए। अब ये कुज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है, इतना हमें देखना है। तो तीसरा गुणस्थान है तो ना कु है ना सु है, दोनों का मिला हुआ ऐसा अलग ही जाति का परिणाम है, तो उसको तीन मिश्र ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान अज्ञान का मिश्र वाला ऐसा मिश्र ज्ञान कहेंगे उसको, तो तीन मिश्र कहेंगे सम्यक। तीन ज्ञान तीन अज्ञान मिश्र, ऐसा छह नहीं गिनना उसको, तीन ज्ञान और तीन अज्ञान के मिले हुए ऐसे तीन मिश्र ज्ञान कहेंगे। संयम कौन सा है? असंयम। दर्शन कितने हो गए? अब यहाँ सम्यक तो है ही नहीं है, इसलिए अवधि दर्शन को यहाँ नहीं लगाना, तो दो ही लूंगी। लेशा द्रव्य की बताओ, अभी पर्याप्त जीव है, तीसरा गुणस्थान है, गुणस्थान से कोई द्रव्य की लेशा तो बदलने वाली नहीं है। कृष्ण लेशा बराबर। और भाव से दूसरा नरक है, भाव से कौन सी लेशा है? हमने ऊपर से कौन सी शुरू की थी? कपोत, मध्यम कपोत। ये भव्य है कि अभव्य है? भव्य। हाँ, और सम्यक तो कौन सा होगा यहाँ? सम्यक मिथ्यात्व, जो गुणस्थान है उसका ही नाम है। हाँ, और संगी, संगी है आहारक के अनाहारक? आहारक। और उपयोग दोनों, ऐसे ना वो आए नहीं था दो तीन दिन तो ऐसा लगता है कि नहीं समझे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, शुक्ल शुक्ल और कापोत विग्रह गति है ना, तो विग्रह गति में कोई बिना मोड़ की है वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचता है, तो उसकी कापोत ही चालू हो जाती है। और जो मोड़ वाला है तो मोड़ के पहले पहले उसको कारमाण का योग होता है, तो कारमाण का योग में हमेशा शुक्ल लेशा होती है, उसका वर्ण शुक्ल है। उसका कारण भी बताया था कि एक एक कर्म परमाणु के साथ अनंतानंत अन्य परमाणु चिपके हुए चले आते हैं, वो हमारा कुछ लेना देना नहीं उसको, वो हमारा कर्म नहीं कहलाता, फिर भी जीव यहाँ से मरकर अन्यत्र चला जाता है, तो उसके साथ कर्म भी एक क्षेत्रावगाह से जाते हैं, तेजस और कारमाण शरीर के साथ जाता है, और उसके साथ चिपके हुए अन्य विश्रसोपचय कहते उसके, बस वो तो स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण उसके साथ चिपके हुए हैं, तो उसका जो स्कंद बन जाता है तो वो तो उसका शुक्ल वर्ण है, तो वहाँ उसका शुक्ल वर्ण है। और वहाँ जाता है तो सभी प्रकार के छहों प्रकार के कलर्स वो उसके परमाणु ग्रहण करता है, सबका मिला जुला ऐसा एक कापोत वर्ण कहा गया। हाँ, बराबर। मोड़ के पहले पहले शुक्ल और अंतिम जो समय है वो कपोत हो जाता है, क्योंकि मिश्र का योग चालू हो जाता है। हाँ, जो पहले ही समय होता है ना, हमने कहा वो आहार ही रहता है, वो तो डायरेक्ट कपोत लेशा हो जाती है उसकी। अभी इसको हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरे नरक का जो हाँ, ये तो समझाने के लिए। नरक नरक में जाने वाला और देव में जाने वाले को तीन मोड़ लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो नरक में और स्वर्ग में कौन जाएगा, कौन से गति वाला जाएगा? मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्य और तिर्यंच जाएंगे। और वो कौन से जीव जाएंगे? या तो संगी या असंगी जाएंगे ना स्वर्ग में जाने वाले, बराबर है। अन्य तो कोई निगोद विगोद वो नहीं जाएंगे कि वायु का एक वाले, वो तो स्वर्ग नरक में नहीं जाते, यानी बिल्कुल लोकाकाश के नीचे के एंड तक जो है कि जिनको एक मोड़ एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कोई भी चौरस चीज है तो कहीं से कहीं तक पहुंचने में तो उसको तो दो ही मोड़ से पहुंच जाता है। और जो लोकाकाश है हमने देखा है, लोकाकाश अनिवन है ना, उसका कहीं ज्यादा है कहीं है। अब यह नीचे का, यहां से कोई जीव यहां पर जन्मना है, मान लो वायु का एक है कुछ, नीचे कौन सा लिया हमने, लोकाकाश के अंत तक जो ऐसे नीचे सात राज्य है वहां, और ऊपर जो ब्रह्म स्वर्ग के पास जो अंदर बाहर आया है, बाहर से सीधे ही सीधे जाता तो उसमें आलोकाकाश में से जाना पड़ेगा, वैसे तो जा नहीं सकता। तो ये बीच वाला जो एक राज्य वाला है वहां तक आएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर जहां जाना है वहां गमन करेगा, बराबर। अभी स्वर्ग में और नरक में जाने वाले कहां से जाएंगे, मान लेते हैं तिर्यंच है, तो ये बीच एक राजू के बाहर तो है ही नहीं है, तो एक राजू से ऊपर नीचे कहीं भी गमन हो सकता है, और देव भी उसी एक राजू में है, बाहर तो है नहीं है, जिसको त्रस नाली कहते हैं उसी में स्वर्ग नरक सब है। एक समय नहीं, दो समय हो सकता ना, क्योंकि अंदर भी उसको जाने, दो समय भी हो सकते हैं, तीन समय भी, दो मोड़ में पहुंच ही जाएंगे कहीं भी, तीन मोड़ लेने की उनकी आवश्यकता ही नहीं है। उसी एक राज्य में अभी ऐसे इमेजिन करिए आप, ऐसी कोई नली है, कहीं भी जाना है तो सीधा ऊपर जाए एक मोड़ लेकर किसी जो डायरेक्शन में, और फिर तीसरी डायमेंशन में पहुंचना है उसको तो और एक मोड़, यानी दो मोड़ में उसका काम हो जाता है। ये तो आसान है ना, ये तो वन लाइन में ही जाता है, परंतु अपना वो स्वर्ग अपने ही माथे पर होना चाहिए। समझो वो मेरा वाला स्वर्ग आपके घर के ऊपर होगा तो एक मोड़ मुझे लेना पड़ेगा ना, या तो यहाँ से आपके घर की तरफ आओ पहले और फिर सीधा ऊपर चली जाओ, है ना। ये हो गई बात, अभी हम पढ़ेंगे इसको। ये 470 पृष्ठ पर नीचे है ना, द्वितीय पृथ्वीगत सासादन सम्यक दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर, ये हमने टेबल में देखा था, आप पढ़ रहे हैं। एक सासादन गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारो संज्ञाए, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय। अब योग में चारो मनोयोग, चारो वचन योग और वैक्रिय का योग, ये नौ योग। नपुसक वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान। दूसरे गुणस्थान में तीन अज्ञान कहा और तीसरे में मिश्र कहा था। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन। द्रव्य से काला काला भास कृष्ण लेशा, नारकी में कहीं भी पर्याप्त जीवों में द्रव्य लेशा कहीं नहीं हो तो कृष्ण, अपर्याप्त में किसी भी गति का जीव हो तो शुक्ल और कापोत। आसान है ना, द्रव्य लेशा तो आसान है। हा? भाव से मध्यम कपोत लेशा, दूसरा नरक है, इसलिए दूसरे नरक में कोई भी गुणस्थान हो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरे नरक में कोई भी गुणस्थान हो तो उसकी भाव से लेशा समान होगी, किसी भी नरक का जीव है। सातवें नरक का नारकी भी क्यों नहीं हो, गुणस्थान उसका भले पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, उसकी भाव से लेशा सबकी समान होगी कृष्ण लेशा। अभी उसमें थोड़े वेरिएशन होगी, कृष्ण लेशा में भी डिग्री कम ज्यादा होगी, है ना। भाव से सातवें नरक में द्रव्य से तो कृष्ण लेशा सभी जगह है, और भाव से कौन सी है, कृष्ण लेशा।
द्रव्य से
कृष्ण लेशा में शरीर का वर्ण सबका काला है,
लेकिन भाव लेशा सातवें नरक की कृष्ण ही होगी।
हाँ, परम कृष्ण लेशा कही, भले वो पहला गुणस्थान वाला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, ये बात मैंने की। एक बात है अभी चौथे वाले की, वो कृष्ण में थोड़ी तरतमता होगी, परंतु सबकी कृष्ण लेशा ही कही जाएगी, ख्याल आता है ना।
उसमें घने भेद है, बहुत है। कृष्ण लेशा में भी बहुत भेद है।
कृष्ण लेशा भी वो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद है। परंतु सबका नाम कृष्ण लेशा ही होगा। तो यहाँ द्रव्य से काला काला भास कृष्ण लेशा, भाव से मध्यम कापोत लेशा, भव्य सिद्धिक, ये सासाधन वाला है इसलिए भी भव्य सिद्धिक है, सासाधन सम्यक्त्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब तीसरा गुणस्थान, द्वितीय पृथ्वीगत, सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर, एक सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैक्रिय काय योग, ये नौ योग, नपुसक वेद, चारों कषाय। अभी ज्ञान में देखो क्या लिखा, तीनों अज्ञान मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, यानी तीन और वो तीन मिश्रित हो गए तो तीन ही रहे, छह नहीं हो गए। तीन ज्ञान, तीन अज्ञान और मिश्र, ऐसा लिखा।
तीन अज्ञान मिश्र लिखना चाहिए।
हाँ,
पहले वाला की पहले ज्ञान कौन रखा
है? तीन ज्ञान, तीन अज्ञान का मिश्र वाला, कौन से मिश्र है इसलिए वो लिखा। हाँ, यानी उसकी संख्या तीन ही रही ना। हाँ, संख्या छह नहीं होती उसकी।
देखो, तीन मिश्र अज्ञान कहो या अज्ञान मिश्र कहो, एक ही है, लेकिन वो ऊपर की तीन ज्ञान जो लिखा है वो क्वांटिटी बताने के लिए,
यानी तीन ज्ञान प्लस तीन अज्ञान, ऐसा लेना, बीच में बीज प्लस साइन लिख दो, तीन ज्ञान प्लस तीन अज्ञान, ऐसे मिश्र।
तो टोटल तो तीन ही होगी ना,
तीन ही होगी,
तो तीन अज्ञान को हटा दे, तीन अज्ञान मिश्र,
तीन मिश्र,
तीन मिश्र लिखो तो ठीक है ना।
ये अपने समझने के लिए जो कुछ लिखना है वो तीन अज्ञान मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, ऐसा लिखे। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन हम पढ़ रहे हैं 471 पर। हाँ, और टेबल उसका इसी नीचे भी है। हाँ, अब द्रव्य से लेशा अभी हमने देखी ना, सबकी कृष्ण लेशा है, तो काला काला भास कृष्ण लेशा, और भाव से मध्यम कापोत, दूसरा नरक है। भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब पृष्ठ पलटने के पहले हम दूसरे नरक का नारकी है उसमें चौथा गुणस्थान लगाएंगे। हाँ? विनोद भाई आप लगाना गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्त के अपर्याप्त। हाँ, क्या कहेंगे पिनाक भाई आप, पर्याप्त लेना क्या अपर्याप्त, सम्यक दृष्टि है, दूसरा नरक है, पर्याप्त ही है, क्यों? पहले नरक में तो हमने पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए थे, सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि मरकर पहले ही नरक में जा सकता है, आगे वाले नरकों में सम्यक्तों के साथ नहीं जाता है, बराबर। इसलिए दूसरे नरक का जो चौथा गुणस्थान हमने देखा था उसमें पर्याप्त जो है, वहां जाने के बाद सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, परंतु यहाँ सम्यक के साथ मरकर कोई नीचे जावे तो पहले ही नरक तक जाएगा, दूसरे तीसरे आगे कहीं नहीं जाएगा। इसलिए चौथे गुणस्थान में दूसरा नरक हो या आगे सातवें तक कहीं का भी हो, उसमें एक पर्याप्त ही आलाप होगा। तो जीव समास में हम क्या कहेंगे, संगी पर्याप्त, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, नरक गति, इंद्रिया, पंचेंद्रिय, काय, त्रस्का, योग में नौ। हाँ, अभी वो दो को नहीं लेना इसमें, वेद, कषाय, हाँ, ज्ञान, हाँ, तीन सूद ज्ञान, अभी चौथा गुणस्थान है। हाँ, असंयम, असंयम दर्शन, अब तीन लगाना, अवधि ज्ञान लिया ना तो अवधि दर्शन को भी ले लेना साथ में, लेशा द्रव्य से कृष्ण लेशा और भाव से मध्यम कापोत, दूसरा नरक है मध्यम कापोत, भव्य के अभव्य, अभी सम्यक तो बताना, आप भी सोच लो कौन कौन से हो गए। हाँ आप क्या कहते पीना? हाँ सम्यक दृष्टि है। कौन कौन से सम्यक तो यहाँ हो सकते हैं? सम्यक तो कितने प्रकार के हैं? तीन। कौन कौन से? औपशमिक, शाक्षमिक और क्षायिक। तो इसमें से यहाँ कौन सा सम्यक तो हो सकता है? क्षायिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्षौपशमिक होगा कि नहीं होगा और औपशमिक होगा कि नहीं होगा? तो कोई नरक में आकर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो उसने औपशमिक समय दर्शन प्राप्त किया तो उसका सम्यक तो अंतर्मूर्त के बाद कायम रह सकता है कि नहीं सकता? नरक में बहुत साल तक उसका सम्यक तो बना सकता है ना? सम्यक तो के साथ वो मनुष्य में भी आ सकता है, तो वो तो औपशमिक में से क्षौपशमिक हो जाएगा। तो कौन से दो हो गए अभी सम्यक तो? औपशमिक और क्षौपशमिक।
देखिए इस बात को हमको ध्यान में रखने के लिए एक उदाहरण अपने ख्याल में रखना। कोई यहाँ से मरकर नरक में गया, सातवें नरक में गया, वहां जाते ही कुछ काल में औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया और उसके 33 सागर की आयु है, वो आखिरी तक कुछ समय तक वो सम्यक भी रहा और लास्ट मोमेंट में मरण आया उसके पहले वो फिर से मिथ्यात्व में जाएगा, तो उसका सम्यक तो कितने काल टिका? समझो 30 या 33, उसमें कुछ कम। तो इतने काल तक उसका जो सम्यक तो रहेगा वो तो क्षौपशमिक सम्यक तो ही होगा, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो का काल तो केवल एक अंतर्मुहूर्त मात्र है। तो हिचकिचाना नहीं, बिल्कुल सहायक सम्यक तो बहुत काल तक टिकता है। हमने देखा था 66 सागर तक रहेगा।
और प्रत्येक जीव को औपशमिक सम्यक तो में से एक क्षौपशमिक होगा, ऐसा नहीं?
हाँ।
कोई नरक में जाता है, यहाँ पर उसका पहले सम्यक तो होकर छूट गया है, नरक में जाकर वहाँ क्षौपशमिक सम्यक तो उत्पन्न करता है।
लेकिन जो वहाँ जाके पैदा करेगा तो उसको भी उपशम सम्यक तो भी होगा, इस अपेक्षा
दोनों
से दोनों है ना?
औपशमिक भी हो सकता है।
हाँ।
क्षौपशमिक डायरेक्ट क्षौपशमिक,
और
हर समय क्षौपशमिक होने के लिए औपशमिक होने पड़े, ऐसी बात नहीं।
और दूसरी बात यह है कि पहले नरक से नीचे के, मतलब नीचे यानी दूसरे तीसरे चौथे ऐसे आगे के नरकों में क्षायिक सम्यक भी जाएगा ही नहीं और वहां जाके कोई पैदा भी नहीं करेगा, तो ये बात ध्यान रखना। क्षायिक
का मैक्सिमम काल कितना है बोलो? अनंत काल है। क्षायिक हुआ अभी सिद्ध भगवान होकर वो क्षायिक रहेगा कायम। देखो आपका ऐसा प्रश्न है, पहले नरक में जो सम्यक्त्व के साथ आता है अपर्याप्त अवस्था में, तो वो औपशमिक तो हो नहीं सकता क्योंकि औपशमिक में मरण नहीं है, तो क्षौपशमिक हो सकता है या क्षायिक हो सकता है। जैसे हमें क्षणिक राजा की बात मालूम है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है थे और अभी वो नारकी है, तो क्षायिक सम्यक तो छूटे नहीं, वो तो चालू है, ख्याल है ना? और कोई क्षौपशमिक वाले भी आते हैं, कल बात आई थी ना कि कृतकृत्य वेदक आते हैं नरकों में, यानी वे भी आ सकते हैं और वहां जाके क्षायिक हो जाएगा एक अंतर्मूर्त में। नहीं, क्षायिक का मतलब ही क्या कि अनंतानुबंधी और दर्शन मोह की तीन प्रकृति इनका सत्ता में से समूल नाश किया है, समूल नाश किया है, मिथ्यात्व का उदय ही नहीं होगा तो मिथ्यात्व का बंध भी नहीं होगा। मोहनीय कर्म में भी ऐसी व्यवस्था है, जिसका उदय होगा तो उसका बंध होगा। अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो उसका बंध भी नहीं है, ख्याल आता है? हाँ देखो, कोई आपका प्रश्न है कि जो क्षौपशमिक के साथ आता है तो उसका पूर्व गति में पहले औपशमिक हुआ होगा। तो औपशमिक में मरण, यानी औपशमिक के काल में मरकर औपशमिक के साथ तो नहीं आएगा, परंतु औपशमिक पूरा हो गया, क्षौपशमिक हुआ, अभी क्षौपशमिक में मर सकता है और क्षौपशमिक के साथ अगले भव में जाता है, किसी भी भव में जावे, शवशमिक समित्व के साथ मरण होकर अन्य भूमि में भी उसका शवशमिक चालू रहे, उसमें कोई बाधा नहीं है। और नहीं नहीं, शवशमिक वाला मरेगा तो मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे नरक में जाने वाला जीव हो तो की बात है, तो मिथ्यात्व में जाता है। हाँ, पहले नरक में एक शवशमिक वाला जा सकता है, दूसरे या नीचे के नरकों में जाने वाला जीव है, क्योंकि पहले उसने नीचे के नरक नरकायु बांधी है, और जो कौन से नरक में जाने वाला है और यहाँ सम्यक क्षायिक होगा तो पहले में आएगा, और क्षयोपशमिक होगा तो मिथ्यात्व में जाएगा, और कहीं भी किसी भी नरक में जा सकता है, भले पहले में भी जा सकता है, और वहां जाकर दोबारा सम्यक तो प्राप्त भी करेगा नहीं भी करेगा, ऑप्शन है उसके लिए, कोई भी कर सकता है, उसकी बात यहाँ चल रही। तो ये हम कहाँ तक आए गए, सम्यक तो तक आए थे। संगी आहारक है कि अनाहारक? आहारक, क्योंकि यहाँ अपर्याप्त आलाप हमने लिया नहीं, और उपयोग है दोनों। अब हम पलट कर इसको पढ़ेंगे, 472 पृष्ठ पर आए हैं हम। द्वितीय पृथ्वीगत असंयत सम्यक दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारो संज्ञाए, नरक गति मिला ना, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय। अब योग में देखो, चारो मनोयोग, चारो वचन योग और वैकरेक का योग, ये नव योग। नपुसक वेद, चारो कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से काला काला भास कृष्ण लेशा और भाव से मध्यम कापोत लेशा, भव्य सिद्धिक, सम्यक दृष्टि है इसलिए भव्य सिद्धिक, क्षायिक सम्यक्त्व के बिना औपशमिक और क्षायोपशमिक, ये दो सम्यक्त्व, सौनिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब तीसरी पृथ्वी में ये लगाना है तो कहाँ कहाँ डिफरेंस होगा, लेशा सम्यक्त में भी होगा, सम्यक्त में क्या होगा उसकी बात नहीं, सम्यक दृष्टि की बात है, सम्यक हम चौथा ही गुणस्थान लेते हैं, तीसरे नरक में हमको ये आलाप लगाने सब सभी प्रभु, लेशा में फर्क होगा, तीसरे नरक की कौन सी लेशा होगी, हाँ उत्कृष्ट कापत और बहुत अच्छा जघन्य नील, अब वही हमको चौथे नरक में देखना है तो मध्यम नील, पांचवे नरक में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, छठे में मध्यम कृष्ण और सातवें में परम कृष्ण, बराबर, ये लेशा में फर्क पड़ेगा। यानी ये जो डिफरेंस है ये तो लेशा में पड़ेगा, बाकी तो आलाप वही हो गए, हमने अभी सम्यक दृष्टि की बात की, वैसे अन्य गुणस्थानों में भी ऐसा ही होगा ना, गुणस्थान बदलेगा और सम्यक्त्व के नीचे वो जो मिथ्यात्व है उसको मिथ्यात्व लिखना है, और सासाधन वाले को सासाधन लिखना है, और सम्यक मिथ्यात्व वाले को सम्यक मिथ्यात्व लिखना है। हाँ, मिथ्यात्व में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों आएंगे। अब यहाँ पढ़ते देखो, इसी प्रकार तृतीय पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारकियों में चारों गुणस्थानों के आलाप कहना चाहिए, इतनी विशेषता है, यानी कहाँ कहाँ ख्याल में रखना उसकी बात है, कि तृतीय पृथ्वी के नौ इंद्रक बिलों में से ऊपर के आठ इंद्रक बिलों में उत्कृष्ट कापोत लेशा होती है। बिल ऊपर के बिल यानी के वो प्रतर होते हैं, नारकियों के लेयर्स होते, पटल कहते उसको, एक पटल दूसरा पटल तीसरा पटल ऐसा, तो तीसरे पल नरक में जो नौ है एक के नीचे एक, जैसे हमने ग्रहवेग देखे ना, एक के ऊपर एक नौ ग्रहवेग होते, तो वैसे ये पहले में कितने 13 होते, दूसरे में 11 होते, तीसरे में 9 होते, तो ऊपर के 8 में कौन सी है, हाँ उत्कृष्ट कापत, और नीचे के 9वें इंद्रिक बिल में इंद्रक बिल का अर्थ होता है सेंटर का बिल, ना बहुत सारे बिल है ना, एक एक लेयर में बहुत सारे बिल है, सेंटर में एक एक है और बाजू में बहुत सारे नरक के बिल है, तो सेंटर वाले बिल को इंद्रक बिल कहते हैं। तो वहां तक देखो, नीचे के देखो नौ इंद्रक बिलों में से ऊपर के आठ इंद्रक बिलों में उत्कृष्ट कापोत्लेशा होती है, और नीचे के नौवे इंद्रक बिल में कितने ही नारकी जीवों के उत्कृष्ट कापोत्लेशा होती है तथा कितने ही नारकों के जघन्य नील लेशा होती है। अलग अलग जीवों में वहाँ ये दोनों ही प्रकार की लेशाएं पाई जाएंगी, क्योंकि जघन्य नील लेशा और उत्कृष्ट कापोत्लेशा की सात सागरोपम स्थिति का आगम में निर्देश है। ये तीसरे नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो सात सागरोपम है। अतएव तीसरी पृथ्वी के नौवे इंद्रक बिल में ही उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील लेशा बन सकती है। कहां पर ये बनेगी? जहां वो सात सागरोपम की उत्कृष्ट आयु है वहां तक, यानी जहां जहां नीचे नीचे जाएंगे तो वह आयु भी ज्यादा है नारकियों की और लेशा भी तीव्र तीव्र होती जाएगी। इस प्रकार तृतीय पृथ्वी में उत्कृष्ट कापोत लेशा और जघन्य नील लेशा कहना चाहिए। चौथी पृथ्वी में मध्यम नील लेशा है, अभी हमने देखा था ना। पांचवी पृथ्वी के पांच इंद्रक बिलों में से, देखो इनकी संख्या कैसे निकालना है, पहले में 13 है लेयर्स पटल, दूसरी में 11 है, तीसरी में 9 है, चौथी में 7 है, पांचवी में 5 है, अभी लिखा ना।
देखो इससे बहुत आसान तरीका, जो नीचे सातवां नरक है, सबसे सातवें नरक में एक ही बिल है,
एक बिल नहीं एक पटल
पटल पटल, फिर ऊपर में तीन, ऐसा ऑड में आते जाना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये पटल हो जाएंगे हर एक नरक के।
लेयर्स उसके अलग अलग है और हर लेयर में बहुत सारे नरक होते हैं, सेंटर में एक होता है और चहु और अन्य अन्य होते हैं वो सब नरक के बिल। तो पांचवी पृथ्वी के पांच इंद्रक बिलों में से सेंटर के बिल को इंद्रक बिल कहते हैं। ऊपर के चार इंद्रक बिलों में उत्कृष्ट नील लेशा ही है, जैसे वहां हमने देखा था नीचे के पटल में से नीचे वाली दूसरी लेशा शुरू हो जाती है, और पांचवें इंद्रक बिल में उत्कृष्ट नील लेशा तथा जघन्य कृष्ण लेशा है, क्योंकि जघन्य कृष्ण लेशा और उत्कृष्ट नील लेशा का आगम में 17 सागर प्रमाण काल का निर्देश किया गया है, यानी पांचवें नरक की उत्कृष्ट आयु 17 सागर है। अतएव पांचवी पृथ्वी के पांचवें इंद्रक बिल में ही उत्कृष्ट नील लेशा और जघन्य कृष्ण लेशा बन सकती है। इस प्रकार ये दोनों ही लेशाएं पांचवी पृथ्वी के नारकी जीवों के होती है। छठवीं पृथ्वी के नारकों के मध्यम कृष्ण लेशा होती है, सातवीं पृथ्वी के नारकों के उत्कृष्ट कृष्ण लेशा होती है। वहां की आयु कितनी है मैक्सिमम? 33 सागर। इस प्रकार नरक गति के आलाप समाप्त हुए, यानी नरक गति के आलाप में हमने सामान्य पहले देखा, फिर पर्याप्त नारकी अपर्याप्त नारकी देखे, उसमें गुणस्थानों की चर्चा की, फिर पहले नरक की बात अलग की और हर नरक में चारों चारों गुणस्थान लगाए, दूसरे नरक से सातवें नरक तक बहुत सारी बातें समान थी, लेशा में जो अंतर है वो भी बता दिया। अब यहाँ पर नारकी जीवों के आलाप समाप्त हो गए, अब हमारी गति मार्गणा चल रही है तो अगली गति हम ले लेंगे। हाँ, तो अब तिर्यंच गति के आलापों को कहते हैं। तो तिर्यंच गति के आलाप जब कहेंगे तो सबसे पहले कहेंगे सामान्य तिर्यंच, यानी तिर्यंच इन जनरल, सामान्य तिर्यंच यानी जिसमें कोई भेद किए बिना सभी भेद जिसमें गर्भित है, ऐसा सामान्य नाम का भी एक भेद ही होता है, उसको भी भेद कहते हैं। हाँ, तो पहला है तिर्यंच यानी सामान्य तिर्यंच, उसमें विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन जो जो पॉसिबिलिटी हो वो सब इसमें कहनी पड़ेगी, एक इंद्रिय से लेकर सभी जातियां इसमें लगानी पड़ेगी, है ना। जब तिर्यंच कहेंगे तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पांच जाति कहनी पड़ेगी, स्थावर काय भी कहना पड़ेगा, त्रस्काय भी कहना पड़ेगा। अब उस अपेक्षा से पहले हम खाली बस गति नरक गति और काय त्रस्काय बता दिया, अभी सोच सोच कर बताना है। अब एक तो आज आलाप हुआ तिर्यंच का, दूसरा आलाप है पंचेंद्रिय तिर्यंच का, तीसरा है पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त का, चौथा है पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, यानी वो स्त्री वेद वाले, भाव से स्त्री वेद लेना यहाँ, योनिनी का उसको, और पांचवा है पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, ये फिर अपर्याप्त लिखा है, वो लब्धि अपर्याप्त की बात है, वो आएगी आगे बात। इनमें से सामान्य तिर्यंचों के आलाप कहने पर, अभी हम देखते हैं लेफ्ट साइड का ही टेबल अपने गाइडेंस के लिए ले लो, हाँ, क्योंकि हमें तो 20 प्ररूपणाओं के नाम देखने हैं। हाँ, तो अभी कौन हिम्मत करेगा? मंजू बेन आप लगाना, हाँ, यू कैन ट्राई। अश्विन भाई, हाँ बताना, गुणस्थान कितने कितने हो गए? 1 से 5 गुणस्थान है। जीव समास लगाना, वेरी गुड, सभी 14 के 14। कौन से 14 है मंदा बेन, मालूम है? नाम कौन से? हाँ, एकेंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के भी 2, संगी असंगी, हाँ, और सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त। तो इन सभी में तिर्यंचों में तो 14 के 14 ही जीव समास पाए जाते हैं, तो तिर्यंच का सामान्य आलाप है उसमें 14 जीव समास बताए। अब पर्याप्त बताओ, हाँ, 6 6, हाँ हाँ, बस हो गया, हाँ 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 हाँ, और बहुत अच्छा, यानी 6 6 5 5 4 4 है ना, पर्याप्ति अपर्याप्ति। प्राण बताना, हाँ 4 3, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं 10 7, देखो 10 7 7 7 बताया था, 10 7 9 7 8 6 7 5 6 4 4 3, एक इंद्रिय का 4 3 है ना, और हाँ पर्याप्ति प्रहण संध्या चारो, अभी उसमें हाँ 5 संख्या लिखा है, एक इंद्रिय से 5, हाँ 6 काय है ना, 5 स्थावर है और 1 त्रस्क है, हाँ योग बताना, तिर्यंच में बताओ, देखो देखो आप गिना नो, सबके मिलकर गिनाओ, मनोयोग 4, वचन योग 4, औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमा, बराबर, आहार द्विक नहीं हो गए और वैक्रिक द्विक नहीं हो गए, ख्याल आता है, हाँ। वेद 3 कषाय, ज्ञान, हाँ 3 कुज्ञान और 3 सुज्ञान, संयम बताओ, हाँ असंयम और संयम, असंयम ये 2 संयम हो गए, हाँ दर्शन में 3, लेशा द्रव्य की 6 लेना, तो 6 में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे, हाँ और भाव की भी 6 लेशा लेना, भव्य के अभव्य दोनों, सम्यक तो कौन कौन से हो गए, हाँ हाँ, तो 6 सम्यक, क्षायिक भी होगा कि नहीं होगा, क्षायिक समय दृष्टि मरकर भूभूमि में होता है ना जन्मता है, तो क्षायिक भी होगा तिर्यंचों में, संगी असंगी दोनों, आहारक दोनों, ओके बहुत अच्छा, तो ये सामान्य तिर्यंच का लगा लिया हमने।
जब हम सामान्य की बात करते हैं वहां तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है उसका नंबर देने का, यानी अधिक से अधिक क्या हो सकेगा वो यहाँ पर बताने का रहता है।
अभी पहले हम अपर्याप्त का लगाएंगे, सामान्य तिर्यंच अपर्याप्त, देवेंद्र भाई आप बताना, गुणस्थान कौन कौन से हो गए, पहला दूसरा और चौथा, हाँ, संगी असंगी वो सभी अपर्याप्त में सातों लेना, खाली असंगी असंगी नहीं चलेगा, सात अपर्याप्त ऐसा लेना, संगी का एक और असंगी में तो एक केंद्रीय से लेकर वो सब असंगी तक, हाँ तो सात अपर्याप्त कहना। हाँ, जीव समास सात अपर्याप्त, हमारा आलाप कौन सा चल रहा है, तिर्यंच, सामान्य तिर्यंचों में अपर्याप्त, ऐसा सामान्य में तो अभी सामान्य बता दिया, फिर हमारी यहाँ लिखा है कि नहीं मालूम नहीं है उसका, हाँ नहीं होगा, परंतु हम अपनी बुद्धि की कसौटी लगाए ने कि हमें तिर्यंच इन जनरल सभी तिर्यंचों में अकेले अपर्याप्त देखने हैं, तो हम थोड़ा उसमें देखेंगे ना कौन कौन से हो सकते हैं, तो सामान्य तिरंज के पर्याप्त अपर्याप्त है ना आगे, हाँ उसमें भी सभी गुण स्थान लगाएंगे। हाँ, तो जीव समास हमने देखे, पर्याप्ति कितनी कितनी होगी, हाँ अभी पर्याप्त लगा रहे हो, छह अपर्याप्तिया, पांच अपर्याप्तिया और चार अपर्याप्त, कुछ ख्याल में आता है पिनांग? देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, तिर्यंच इन जनरल एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सबको लिया हमने एक साथ, सबके हम अपर्याप्त जीव ले रहे, तो ऐसे में कौन कौन से गुणस्थान होंगे, तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जो कुछ गुणस्थान होंगे अपर्याप्त जीवों में उसकी बात चल रही है, तो उसमें कौन कौन से, पहला दूसरा और चौथा हमने देखा गुणस्थान, जीव समाज सभी चार सातों के अपर्याप्त ले लिए, तो उसमें पर्याप्तियाँ कितनी होगी, तो सभी की अपर्याप्तियाँ होगी, संगी में छह अपर्याप्तियाँ, असंगी से लेकर द्विइंद्रिय तक पांच अपर्याप्तियाँ और एक इंद्रियों में चार अपर्याप्तियाँ। आगे वाला कौन सा है, हाँ प्राण, अभी प्राण गिनाओ, सात सात, छः पाँच तीन, बराबर है, एक इंद्रिय तक लेना है ना, तो तीन भी लेना, अपर्याप्तों के खाली प्राण बताना है, संज्ञाएं, गति, तिरंज, इंद्रियां, हाँ इन्हें पांच, काय, छठ काय, छह संख्या लिखनी पड़ेगी, योग कौन कौन से हो गए, हाँ हाँ ख्याल है, औदारिक मिश्र और कर्म, वेद में और कषाय में ज्ञान, दो कुज्ञान, कुज्ञान में दो ही लेना और सम्यक ज्ञान में तो तीनों लेना, संयम, संयम असंयम भी लेना नहीं है, दर्शन, हाँ तीन, और लेशा, हाँ द्रव्य की कौन से दो, शुक्ल कपोत, और भाव की, भाव की तीन अशुभ होगी, अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंचों में तीन अशुभ ही होगी, समय दृष्टि को भी, अशुभ है ना, हाँ सामान्य तिर्यंच के अपर्याप्त 270 478 61 64 61, हाँ तीन अशुभ तिर्यंचों में अपर्याप्त अवस्था, तिर्यंच अपर्याप्त अवस्था, भव्य के अभव्य, सम्यक तो कौन कौन से हो गए, मिश्र को नहीं लेना, अपर्याप्त है ना। तो पहले हमने गुणस्थान बता दिए, वैसा सम्यक तो लिखना, मिथ्यात्व, सासाधन और फिर सम्यक दृष्टि में से तीनों टाइप के सम्यक। औपशमिक नहीं आने, तिर्यंच है, औपशमिक नहीं हुआ, क्षय औपशमिक और शायिक। औपशमिक वाला मरता नहीं है ना, तो मरकर औपशमिक के साथ नहीं जाएगा, तो चार हो जाएगा, चार हो जाएगा। समनी के असंगी दोनों है, आहार कनारक दोनों है और उपयोग दोनों। देखो देखो, सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, फिर सासाधन और सम्यक दृष्टि जो है क्षोपशम के साथ मर कर जाएगा या क्षायिक के साथ जाएगा। औपशमिक वाला मरता नहीं है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में वो नहीं होगा। अब इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से, क्रम से हम लगाते जाएंगे। अभी 473 पृष्ठ पर हम आए हैं, तिर्यंच गति के आलापों को कहते हैं वहां से। तिर्यंच पांच प्रकार के होते हैं, तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त। इनमें से सामान्य तिर्यंचों के आलाप कहने पर आदि के पांच गुणस्थान, 14 जीव समास हमने देखे थे ना, 14 के 14 होते, सौनी के 6 पर्याप्तियां 6 अपर्याप्तियां, असंज्ञेय और विकलत्रयों के 5 अपर्याप्तियां 5 पर्याप्तियां 5 अपर्याप्तियां, एकेंद्रीय जीवों के 4 पर्याप्तियां 4 अपर्याप्तियां, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 10 प्राण 7 प्राण, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 9 प्राण 7 प्राण, चतुरिंद्रिय जीवों के 8 प्राण 6 प्राण, तीनिंद्रिय जीवों के 7 प्राण 5 प्राण, द्विंद्रिय जीवों के 6 प्राण 4 प्राण और एकेंद्रीय जीवों के 4 प्राण 3 प्राण। ये हमने देखे थे बहुत बार, क्रमशः पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में होते। ये जो उन्होंने संख्या बताई है वो पर्याप्तों की और अपर्याप्तों की बताई। चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, एकेंद्रीय जाति आदि पांचों जातियां, पृथ्वी काय आदि छह काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 11 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान, असंयम और देश संयम, ये 2 संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाय, वो तो सभी गुणस्थान है ना, तो 6 लेशाय ले और पर्याप्त भी है। इसलिए भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक्त्व, सौनिक असौनिक दोनों, आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये तो तिर्यंच इन जनरल सामान्य की बात की। अब उन्हीं सामान्य तिर्यंच पर्याप्तकों के आलाप कहने पर, ये हमने छोड़ दिया था ना पर्याप्त का, देखा नहीं हमने, लगाया नहीं था ना, अब पर्याप्त का लगाया था डायरेक्ट। हाँ, तो अभी पर्याप्त का लगाना मंजूर है। पर्याप्त आलाप गुणस्थान कौन कौन से हो गए? 1 से 5 तक। जीव समास, सभी पर्याप्त लेने, सभी पर्याप्त, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सातों ही पर्याप्त। तो पर्याप्तियां कितनी होगी? अकेले 6 होगी, 6 पर्याप्ति, 7 जीव समास लगाए आपने, हाँ 6, 5 और 4 वो सब पर्याप्त। प्राण अभी सबके नहीं कहा, 10, 9, 8, 7, 6, 4 5 नहीं। संज्ञाएं, हाँ, गति, तिर्यंच गति, इंद्रिया, पांचों जाति हमें कहे ना, काय छठ काय, योग में पर्याप्त है तो 9 योग, वेद तीनों कषाय, ज्ञान 6 ज्ञान और संयम, बहुत अच्छा, दोनों हाँ, ये संयम और ये असंयम और संयमासंयम, फिर दर्शन तीन, लेशा में पर्याप्त जीव है ना, द्रव्य से छह लेशा और भाव से छह लेशा, हाँ भव्य के अभव्य दोनों हैं, सम्यक तो कौन कौन सा है, हाँ कौन कौन से, मिथ्यात्व हो सकता है, जो हो सकता है वो बताना, हाँ हाँ क्योंकि आपने पांचों गुण स्थान बताए हैं पर्याप्तों में है ना, तो तीसरे को भी यहाँ लेना पड़ेगा, दूसरे को भी लेना पड़ेगा, हाँ तो ये तो तीन जो सम्यक भी नहीं वो, और सम्यक दृष्टि जीवों में तीन भेद हो गए कि दो हो गए क्या एक होगा, पर्याप्त तिर्यंचों में कौन कौन से सम्यक तो हो सकते हैं, कौन से दो, औपशमिक शाप्शमिक, शायिक वाला आएगा कि नहीं भोगभूमि में, हाँ तो किस, हाँ तो किस किस को लेना है, छह सम्यक तो लेना बराबर, संगी के असंगी दोनों, हाँ आहारक के अनाहारक, आहारक क्योंकि पर्याप्त है और उपयोग दोनों, अब इसी को पढ़ेंगे, हमने पहले अपर्याप्तों की लगाई बात, अब ये दोनों को पढ़ेंगे, पहले पर्याप्तों को फिर बाद में अपर्याप्तों को, किसी को कुछ समझ में नहीं आना तो पूछना, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को समझता है मैं कैसा पूछो, ऐसे बिल्कुल नहीं मन में रहना, ख्याल है, उन्हीं सामान्य तिर्यंच पर्याप्तकों के आलाप कहने पर आदि के पांच गुणस्थान पर्याप्त संबंधी सातों जीव समास, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के छह पर्याप्तियां, असंगी पंचेंद्रिय और विकलेत्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के पांच पर्याप्तियां, एकेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के चार पर्याप्तियां, यानी छह पांच और चार। अभी प्राण की बात होगी तो संगी पंचेंद्रियों के दसों प्राण, असंगी पंचेंद्रियों के नौ प्राण, चतुरिंद्रिय जीवों के आठ प्राण, तीनिंद्रिय जीवों के सात प्राण, द्विंद्रिय जीवों के छह प्राण और एकेंद्रिय जीवों के चार प्राण होते हैं। तो द्विंद्रियों के छह और एकेंद्रियों के चार, कौन से दो कम हो गए, रसना इंद्रिय और वचन बल प्राण, चारों संज्ञाएं तिर्यंच गति, एकेंद्रियादि पांचों जातियां, पृथ्वी काय आदि छह काय, अब योग में चार मनोयोग, चार वचन योग और औदारिक काय योग, ये नौ योग पर्याप्त जीव है, इसलिए तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान और आदि के तीन ज्ञान, ये छह ज्ञान, असंयम और देश संयम, ये दो संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाय, पर्याप्त जीवों में तो छह लेशाय, यानी शुभ लेशाय भी ली, परंतु अपर्याप्त में तो हम जाके देखेंगे अभी आगे, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, हाँ ये सम्यक्त्व, सम्यक तो क्या लिखा है, सम्यक्त्व छह हो गए, छह सम्यक्त्व, छह लिखना, चत्तारी कसा है सने, दो संयमा तीन दंशन है, दो भावी छल से भविष्य देवी, छह सम्मताणी, हाँ छह सम्यक को लिखना, छह करना उसमें, छह सम्यक को सौनिक असौनिक दोनों, आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, ये पर्याप्त तिर्यंच देखे हमने, सामान्य तिर्यंचों में पर्याप्त जीव, अभी उन्हीं सामान्य अपर्याप्त तिर्यंचों के आलाप करने पर, हाँ अभी देवेंद्र भाई ने बताया था वही हम पढ़े, पढ़ना पढ़ना बाकी है, अब पढ़ते समय फिर सोचते सोचते पढ़ेंगे उसको, तो गुणस्थान कौन कौन से हो गए उसमें, अपर्याप्तों में पहला दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं लेना, मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये तीन गुणस्थान, अपर्याप्त संबंधी सातों जीव समास, यानी सभी के अपर्याप्त लेने हैं ना, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के 6 अपर्याप्तियाँ, असंगी पंचेंद्रिय और विकलत्रयों के 5 अपर्याप्तियाँ, एकेंद्रियों के 4 अपर्याप्तियाँ। अभी प्राण बताएंगे। संगी पंचेंद्रियों के 7 प्राण, असंगी पंचेंद्रियों के 7 प्राण, चतुरिंद्रियों के 6 प्राण, तीनद्रियों के 5 प्राण, द्विंद्रियों के 4 प्राण और एकेंद्रीय जीवों के 3 प्राण होते हैं। चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, एकेंद्रीय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी काय आदि 6 काय, औदारिक मिश्र काय योग और कारमान काय योग, ये 2 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, विभंग अवधि ज्ञान के बिना 5 ज्ञान, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होगा, तो कौन से 2 अज्ञान होंगे और सम्यक दृष्टि होगी, उनके 3 सुज्ञान। असंयम आदि के 3 दर्शन, सम्यक दृष्टि को भी लिया ना, इसलिए तीनों दर्शन लिए। अभी लेशा में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं और भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं होती है, तो ये सामान्य से लिया ना, इसलिए कौन सा भी गुणस्थान होता है, पहले दूसरे गुणस्थान में तो तीनों अशुभ होगी और सम्यक दृष्टि को कापोत लेशा होगी। शंका, सामान्य तिर्यंचों के अपर्याप्त काल में तीनों अशुभ लेशाएं ही क्यों होती है, अशुभ ही क्यों बोला, वहां कोई शुभ लेशा वाला क्यों नहीं जन्मता, ऐसा कहते। तिर्यंचों में सभी को अशुभ लेशा क्यों कही है, उसका समाधान, क्योंकि तेजो लेशा और पद्म लेशा वाले भी देव यदि तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से उनकी शुभ लेशाएं नष्ट हो जाती है। पहले हमने देखा था देव मरकर उसी लेशा में जन्मते हैं, परंतु यदि तिर्यंचों में जन्म लेंगे तो उनकी वो लेशा नष्ट हो जाती है। अभी तिर्यंचों की बात चल रही ना, अभी कंफ्यूजन ज्यादा नहीं करना लेशाओं में, नए लोग हैं ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी क्या बात कर रहे हैं, तिर्यंचों में जो भी जन्मेंगे, भले वो देव तो शुभ लेशा में मरकर भी तिर्यंचों में आते हैं तो उनकी तो अशुभ लेशा हो जाती है, तो नियम से उनकी शुभ लेशाएं नष्ट हो जाती है तिर्यंचों में जन्मने वालों की। इसलिए तिर्यंचों की अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशाएं ही होती है। कपोत हो जाएगी, वो अशुभ में ही चले जाएगी। शायिक वाले को भी अशुभ लेशा होगी क्या? नहीं जाता है ना, भोग भूमि का, यहाँ से मनुष्य क्षायिक वाला भोग भूमि में जाएगा तो उसकी भी अशुभ लेशा होगी क्या, ऐसा प्रश्न है मेरा। ऐसा प्रश्न है कि देव में से अभी कोई तिर्यंच में आ जाता है, सम्यक दृष्टि है, तो उसकी कौन सी लेशा होगी? देव में से सम्यक दृष्टि तिर्यंच में जाएगा ही नहीं, मनुष्य में, वही तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने क्या पूछा? तो देव में जो मनुष्य है, सॉरी सम्यक दृष्टि है, नारकी सम्यक दृष्टि हो या देव सम्यक दृष्टि हो, वो तो तिर्यंचों में कोई जाएगा ही नहीं, वो तो सम्मिथ्यात्व में जाके मरेगा, सासाधन में मरेगा, ख्याल है ना, सम्यक्त के साथ वो तो मनुष्य में ही जाएगा। देखो क्या कहते हैं, तेजो लेशा वाले और पद्म लेशा वाले भी देव यदि तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से उनकी शुभ लेशाएं नष्ट हो जाती है, इसलिए तिर्यंचों की अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशाएं होती है। हमें तो इतना ही ध्यान रखना, बाकी नियम भूल जाओ। तिर्यंचों में जो कोई भी जीव उत्पन्न हो गए उनकी अशुभ लेशाओं में से कोई तो लेशा होगी, ख्याल है, वो भले वो कहीं से भी आया हो और कौन से भी गुणस्थान में हो। लेशा आलाप के आगे भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सांसाधन सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व और कृतकृत्य की अपेक्षा वेदक सम्यक्त्व, इस प्रकार 4 सम्यक्त्व। ये ऑर्डिनरी क्षौपशमिक लिया नहीं, नरक में भी नहीं लिया और तिरंच में भी नहीं लिया, दोनों में उन्होंने कृतकृत्य की अपेक्षा वेदक समय को लिया है। अब देखेंगे आगे कुछ इसकी विशेष, अभी तो हमने सामान्य से क्षौपशमिक ऐसा ही कहा था। सौनिक असौनिक, ये कौन सा आलाप चल रहा है याद है ना? हाँ, तिरंचों के अपर्याप्त। कृतकृत्य ने जिसने यहाँ क्षायिक चालू कर दिया है, मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो चुका है, परंतु अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, एक अंतर्मूर्त में वो क्षायिक होने जा रहा है, उसका भी नाम वेदक सम्यक ही है, परंतु उसको कौन सा कहेंगे? कृतकृत्य वेदक। तो ऐसा भी वहाँ तिर्यंच में जाकर वो क्षायिक का कार्य पूरा करेगा। कृतकृत्य वेदक चारों ही गति में जा सकते हैं, इसलिए वो उसकी अपेक्षा भी यहाँ बता दी। यानी चार सम्यक तो बताए, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सासादन और क्षायिक और क्षौपशमिक। हाँ, यहाँ तो लिया है, अभी उसके क्या और आगे कुछ चर्चा होगी तो देखेंगे हम, सम्यक तो मार्गणा में बताएंगे कुछ और। क्षौपशमिक हाँ जा सकता है, क्षायिक होने, अभी क्षायिक तो बता दिया, क्षायिक तो बता दिया उन्होंने, क्षायिक तो अलग से बता ही दिया है, यहाँ क्षायिक पूरा होने के बाद तो जा ही सकता है, परंतु वेदक सम्यक्त्व वाला ऑर्डिनरी वेदक नहीं जाएगा ऐसा अर्थ निकलता है। पता नहीं, अभी हम कुछ रूल नहीं बताएंगे क्योंकि हमें उसमें से ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी यहाँ तो दोनों ही गतियों में कृतकृत्य की अपेक्षा लगाई है, मनुष्य के आलाप में हम आगे देखेंगे कृतकृत्य की अपेक्षा लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्योंकि नियम हम नहीं बना सकते, सूत्र में आएगी बात वो चलेगी अपने, ये तो अभी तक हमारे लिए ये नई बात है जो हमने गोमट सार में नहीं पढ़ी थी, और यहाँ ये बात आई है तो हम इसको आगे गौर करेंगे, इसको याद रखेंगे, जब कभी बात आएगी तो इसकी भी चर्चा होगी आगे। फिर अभी तो 16 भाग पढ़ने हैं ना। यहाँ लिखा है ना, कृतकृत्य की अपेक्षा वेदक सम्यक, इस प्रकार चार सम्यक, तो सौनिक असौनिक दोनों, आहारक अनाहारक दोनों, और साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों ही होते हैं। अब तिर्यंच मिथ्यादिष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर, हमने तो सामान्य तिर्यंच देखे, तो सामान्य तिर्यंचों में हमने गुणस्थान कितने देखे? 1 से 5। अभी इसमें हर एक गुणस्थान पर आलाप लगाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि में कौन कौन से आलाप हो गए? पर्याप्त हो गए, अपर्याप्त, सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त हो गए। दूसरे गुणस्थान में दोनों हो गए, सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो गए। हाँ, जो कुछ हो गए, मगर जैसे नरक में अकेले सासादन में अकेला एक ही आलाप लगा था, वैसे तिर्यंचों में दोनों यानी तीनों लगेंगे, एक सामान्य, एक पर्याप्त और अपर्याप्त। तीसरे गुणस्थानों में खाली एक ही आलाप लगेगा। हाँ, चौथे में सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त सब लगेगा, और पांचवे में पर्याप्त लगेगा, ख्याल है ना? तो ये भी आलाप चलेंगे यहाँ। अब तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर, मयंक भाई आप लगाना, अपना क्राइटेरिया याद रखना, तिर्यंच है, तिर्यंच मिथ्यादृष्टि, बस। हाँ, तिर्यंच मिथ्यादृष्टि, पर्याप्त, गुणस्थान, गुणस्थान बता दिया आपने, हाँ, मिथ्या तो हमने बता दिया ना पहले, मिथ्यादृष्टि जीवों के, तो एक मिथ्या तो गुणस्थान, जीव समास, हाँ, सभी पर्याप्त, यानी 14 हो गए, 14 जीव समास, पर्याप्ति, हाँ, 6-6, 5-5, 4-4 ऐसा लिख सकते भी, बता सकते, प्राण 10-7, 9-7, हाँ, 8-6, 7-5, 6-4 और 4-3, बर ये सब आ गए उसमें, है ना? भले बताने में आगे पीछे कोई बात नहीं, पर हमें ख्याल में है कि नहीं, इतने बात देखना है। प्राण की बात हो गई, अब संज्ञाएं चारों, गति इंद्रिया एक से पांच, पांचों काय, छ हो गए, षट काय, हाँ योग कौन कौन से हो गए, चार मन के, चार वचन के, औदारिक औदारिक मिश्र और कर्म, ग्यारह वेद, तीन कषाय, ज्ञान सामान्य आप बता रहे हैं ना, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, तो दो हो गए कि तीन हो गए, तीनों, तीन को ज्ञान, संयम, हाँ दर्शन, दो लगन, लेशा द्रव्य की छहो और भाव की छहो, क्योंकि इसमें पर्याप्त भी जीव है इसलिए छहो लेना, भव्य के अभव्य दोनों हैं, सम्यक्त्व एक मिथ्यात्व, संगी दोनों, आहारक अनाहारक दोनों, और उपयोग में दोनों। अभी इसको पढ़ेंगे फिर पर्याप्त अपर्याप्त अलग अलग लगाएंगे हम। देखो अब तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर, मिथ्या तो गुणस्थान उन्होंने बता ही दिया है और तिर्यंच है इन जनरल, एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, चौदह जीव समास, संगी पर्याप्तकों के छह पर्याप्तियाँ छह अपर्याप्तियाँ, असंगी पंचेंद्रियों और विकलेंद्रियों के पांच अपर्याप्तियाँ और पांच पर्याप्तियाँ और पांच अपर्याप्तियाँ, एकेंद्रियों के चार पर्याप्तियाँ और चार अपर्याप्तियाँ, प्राण नहीं पर्याप्ति की बात चले, अभी प्राण की बात करेंगे। संगी पंचेंद्रियों के दस प्राण सात प्राण, असंगी पंचेंद्रियों के नौ प्राण और सात प्राण, चतुरिंद्रियों के आठ प्राण और छह प्राण, तीनद्रियों के सात प्राण और पांच प्राण, द्विंद्रियों के छह प्राण और चार प्राण, एकेंद्रियों के चार प्राण और तीन प्राण, क्रमशः पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में होते हैं। फिर चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति आदि पांचों जातियां, पृथ्वी का आदि छह काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग, ये ग्यारह योग, तीनों वेद, उद्धव बराबर है क्या, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, विभंग ज्ञान था इसलिए दो ही दर्शन लिए, द्रव्य और भाव से छह लेशाय, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, ये सम्यक मार्गणा में मिथ्यात्व को लिखा, संगिक असंगिक दोनों, आहारक अनाहारक दोनों, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इन्हीं जीवों पर हम पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी आलाप लगाएंगे, तो मुझे कहना अपर्याप्त जो अभी वो डिटेल हम कल देखेंगे, अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि में लेशा कौन कौन सी होगी, योग, योग आप बता रहे हैं, हाँ अच्छा अच्छा योग बता रहे हैं, औदारिक मिश्र और कार्मण, हाँ और लेशा द्रव्य से शुक्ल और, हाँ शुक्ल और कापत, और भाव से तीनों अशुभ, मिथ्या तो गुणस्थान है, हाँ तीनों हम देखते हैं ना, अपर्याप्त अवस्था में तीनों अशुभ, तिर्यंच में कोई भी गुणस्थान क्यों ना हो, उसकी चर्चा फिर कल करेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो